सुर्खियों में
सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित कुमार। आज हम चर्चा करेंगे मिशन कर्मयोगी के 5 साल और साधना सप्ताह के बारे में। हमारे साथ जुड़ रही हैं क्षमता निर्माण आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान, आपका स्वागत है। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि कर्मयोगी पहल क्या है और इसके लक्ष्य क्या है।
मिशन कर्मयोगी लगभग 5 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी के एक विजन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें ये एक मान्य बात थी कि जब तक लोक सेवक, जिनको हम पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट के नाम से जानते हैं, जब तक उनके क्षमता में उस तरह का वर्धन नहीं किया जाएगा जिसकी आवश्यकता आज के डिजिटल युग में, टेक्नोलॉजी ड्रिवन युग में, जिस तरह की क्षमता का, कैपेसिटीज का आवश्यकता है, जब तक वो अपने पब्लिक सर्वेंट्स को हम नहीं प्रदान करेंगे, विकसित भारत के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल, आशावादी हमारे लक्ष्य हैं, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें, न केवल भारत सरकार में पर हर राज्य में, हर स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पे जो कार्य कर रहा है वहां से लेके जो सेक्रेटरी, सचिव स्तर के जो पॉलिसीज बनाते हैं, इस पूरे हायरार्की में किस तरह का क्षमता का वर्धन होना चाहिए जो एक डायनेमिक रूप से हर लोक सेवक को प्राप्त हो, उन सबका एक विजन लेते हुए मिशन कर्मयोगी को 5 वर्ष पूर्व स्थापित किया गया। और इसी वजह से अभी जो हम लोग अप्रैल 8 तक जो साधना सप्ताह मना रहे हैं, ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का एक तो स्थापना दिवस है, अप्रैल में इसकी स्थापना हुई थी 5 वर्ष पूर्व, और तभी से मिशन कर्मयोगी का क्रियान्वयन, जो ऑपरेशन है, वो भी शुरू हुआ। तो इस सप्ताह के माध्यम से हम पुनः अपने आप को जिस विजन के साथ इस पूरे मिशन को शुरू किया गया, हम लोगों की आज तक की जर्नी क्या है, उस यात्रा के दौरान हमारे अनुभव क्या रहे, और उन अनुभवों को लेके, उन लर्निंग्स को लेके क्या सीख थी हमारी, व्यक्तिगत स्तर पर क्या सीख थी, संस्थागत स्तर पर क्या सीख थी, क्या लर्निंग्स थे, उन सब पे एक चिंतन करना, मनन करना, और आगे का हमारा रास्ता किस तरफ हो, किस तरह से हो, इन सब पे ध्यान देने के लिए हमने ये साधना सप्ताह का भी आयोजन किया है, और जिसमें राज्यों के साथ साथ भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग, ऑर्गेनाइजेशंस, हर स्तर के कर्मचारी, अधिकारी सभी भाग लिए। तो लक्ष्य जो आपने पूछा कि इस लक्ष्य से ये शुरू किया गया, इस लक्ष्य के साथ, इस विजन के साथ शुरू किया गया, जब तक हमारे पब्लिक सर्वेंट्स अपने आप में वो क्षमता नहीं रखेंगे, वो भाव नहीं रखेंगे जिस भाव के साथ हमारे नागरिकों को हमें सेवा प्रदान करना है, उसमें जब तक हम उस तरह का वर्धन, वृद्धि नहीं करेंगे, तब तक विकसित भारत का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाए।
मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण मॉड्यूल में क्या बदलाव किए गए हैं, ये पहले की तुलना में किस प्रकार अलग है?
पहले जहां हम लोग ट्रेनिंग करते थे वो काडर बेस्ड होता था। आप 36 साल 30 साल की नौकरी सरकारी सेवा में आते हैं, आप जब आते हैं तो कुछ संवर्गों में एक फाउंडेशन ट्रेनिंग मिलता था, उसके बाद 7 साल में, 8 साल में एक मिड करियर होता था, और फिर जब आप बहुत सीनियर लेवल पहुंच जाते थे तो एक एपिसोडिक रूप से हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते थे जो सप्लाई ड्रिवन होते थे। पर अभी मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत उस पूरे जो, जिस लक्ष्य के साथ या दृष्टि के साथ परिकल्पना हम ट्रेनिंग का करते थे, उस पूरे में एक मूलभूत परिवर्तन किया गया, और परिकल्पना ये की गई कि एक डायनेमिक रूप से एनी टाइम एनी वेयर कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य होना चाहिए। और क्योंकि आज के डिजिटल युग में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पर्सनलाइज्ड कोर्सेज देते हैं, इसलिए ट्रेनिंग जो पहले संस्थागत होती थी उसको ट्रेनिंग को ही बदलकर कैपेसिटी बिल्डिंग हमने कर दिया, जो कि संस्थागत के साथ साथ ऑनलाइन एनी टाइम एनी वेयर पर्सनलाइज्ड मोड में हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लर्निंग प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये बहुत मूलभूत परिवर्तन हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से लोक सेवकों को किया जाए।
आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म क्या है और इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है?
तो जैसे मैंने बताया था कि एनी टाइम एनी वेयर आज की तारीख में आप केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। आज की तारीख में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा हमारे लोक सेवक राज्यों के, भारत सरकार के, सीपीएसयूज के, पीएसयूज के इसमें ऑनबोर्डेड हैं, और प्रतिदिन इसमें अपना लर्निंग वो प्राप्त कर रहे हैं। और इसमें हम बिहेवियरल, फंक्शनल, डोमेन रिलेटेड कोर्सेज जो उनके मांग है, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स बनते हैं, उन प्लान्स के आधार पर हम क्षमता के किस तरह के गैप्स हैं आज की तारीख में, और हर रोल के हिसाब से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग के कोर्सेज बनाते हैं। तो ऑनलाइन हमारे जो आईबॉट के भी कर्मियों की भारत का प्लेटफॉर्म है, उसमें 1.5 करोड़ लोगों को एक पर्सनलाइज्ड रूप से उनकी कम्पिटेंसी गैप क्या है, उनकी कम्पिटेंसी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से उनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग के लर्निंग प्रोडक्ट्स प्रदान करते हैं।
भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। ऐसे में क्या आईगॉट प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी कोर्स उपलब्ध हैं?
ये सारे हम न केवल क्षेत्रीय भाषा बल्कि कॉन्टेक्स्टुअलाइज्ड उस क्षेत्रीय कल्चर के भी हिसाब से, वहाँ के संस्कृति के हिसाब से, किस तरह से कम्युनिटी में कार्य होता है, सामुदायिक चर्चाएं कैसे होती हैं, किस भाषा का डायलेक्ट का उपयोग होता है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे बहुत सारे मेजर कोर्सेज क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट होके हम लोग प्रदान करते हैं। और यह भी कोशिश करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने अपने कोर्सेज कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बनाया है, उनको भी डिजिटली कस्टमाइज करके आईगॉट प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करें। तो एक बहुत डाइवर्स और स्केल्ड अप मॉडल है जो कर्मयोगी भारत के यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज हम प्रदान करते हैं।
कर्मयोगी पहल से प्रशासनिक कार्य क्षमता में किस तरह के सुधार देखने को मिले हैं, और क्या इन सुधारों से आम लोगों को किसी तरह का फायदा मिल रहा है?
लोकहित का जो पूरा भाव है वो है कि नागरिक देवो भावन, जो हम लोग अपना एक मंत्र लेके चलते हैं कि हमारा नागरिक ही हमारा केंद्र बिंदु है। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को हमारे गुणवत्ता पर किस तरह से किया जाए और उसको गुणवत्ता में तब्दील करने के लिए लोक सेवकों को किस तरह का क्षमता प्रदान किया जाए, उसमें बहुत बड़ा बदलाव ये मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत किया गया है। और आगे चल के इसमें AI को लेते हुए, टेक्नोलॉजीज को लेते हुए किस तरह से और बेहतर हम क्षमता वर्धन कर सकें, उसका भी हमारा प्रयास आगे चल के इस सप्ताह के माध्यम से भी हम तय करेंगे। और सेक्टर वाइज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फाइनेंस के, इकोनॉमी के, कम्युनिटी वर्किंग में, अर्बन गवर्नेंस में, किस किस तरह से एक एक सेक्टर में हम अपने सर्विसेज को और अधिक सुदृढ़ बना सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, जिससे नागरिक को और सुविधा के साथ गुणवत्ता परक सेवा प्राप्त हो, वो हमारा मंशा रहेगा।
इस मिशन में तकनीक की भूमिका बहुत अहम है, ऐसे में इसे समावेशी और बहुउद्देश्यीय बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
सबसे अच्छी बात हमारी टेक्नोलॉजी की ये है कि जब आप स्केल करते हैं वो इंक्लूसिव अपने आप ही हो जाता है। तो जो समावेशी वाली बात है वो तो है ही, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और हर कोई कहीं पे भी बैठ के, गांव पंचायत का एक सचिव भी आज आईगॉट प्लेटफॉर्म में, जैसे यहाँ का भारत सरकार का सचिव सेक्रेटरी लेवल पे अगर एक्सेस करता है, उसी तरह से एक पंचायत सचिव भी उसको एक्सेस कर सकता है। ये समावेशी है और बहुउद्देश्य इसलिए भी है, जैसे मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजिक लेवल से लेके नागरिक से जो उन्मुख होके बात करते हैं हमारे, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, पुलिस कांस्टेबल हो, हमारा इस सप्ताह के दौरान एक मुख्य ये भी रहा, उद्देश्य रहेगा कि हम ऐसे कर्मचारी जो सिटीजन फेसिंग है उनके क्षमता में, उनके क्षमता इस तरह से बढ़ाएं ताकि वो नागरिकों से जिस तरह से सेवा प्रदान करते हैं उनको, उसमें और किस तरह से वृद्धि लाया जा सके, उसके लिए भी कैपेसिटी बिल्डिंग के मॉड्यूल्स हम लोग अभी 2 तारीख को लॉन्च करेंगे।
इस पहल को लेकर एक आम धारणा ये है कि ये केंद्र की पहल है तो केंद्र तक सीमित होगी, लेकिन इसमें राज्य सरकारों के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, ऐसे में उनकी ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है?
हमारे राज्यों के और कर्मचारी और अधिकारी इसमें ऑलरेडी भाग ले रहे हैं, आईगॉट में रजिस्टर्ड हैं, और जिस उत्साह के साथ राज्यों ने अपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान पिछले 7 महीनों में हमने बनाए हैं, करीब 30 स्टेट्स एंड यूटीज ने अपने कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान हमारे साथ बनाया है, और बल्कि उनका डिमांड है कि उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कोर्सेस हैं, उनको भी इसमें समावेश किया जाए और उनके कर्मचारी और अधिकारी आईगॉट से और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत अपना योगदान देते हुए अपना क्षमता का वर्धन करें।
साधना सप्ताह के तहत 3 T, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन और टेंजिबल आउटकम को थीम बनाया गया है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये क्यों महत्वपूर्ण है?
इस सप्ताह में हमने ये 3 मंत्र रखे हैं, ये 3 हमारी थीम्स हैं। टेक्नोलॉजी जो आज विकल्प नहीं है और AI का युग है और AI समिट हुआ है, तो हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को, AI को किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, स्वास्थ्य, शिक्षा में किस तरह से इसको लाया जाए, इसलिए हमने उस पर फोकस रखा है। ट्रेडिशन इसलिए कि भारत के जो सांस्कृतिक धरोहर है बहुत सदियों से, उस धरोहर में जो ज्ञान है, जो विजडम है, हर क्षेत्र से संबंधित उसमें जो विजडम है, उसको किस तरह से हमारे लर्निंग में, हमारे ट्रेनिंग्स में, हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज में लाया जा सके, उस पर भी इस बार हम फोकस करेंगे। टैंजिबल आउटकम्स इसलिए, जैसे मैंने कहा, विकसित भारत के लक्ष्य 3 साल में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, 2 साल में क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसमें किस तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, उस ओर हम ध्यान देंगे। इसीलिए इन 3 मंत्रों को हमने केंद्रित करते हुए ये सप्ताह का आयोजन किया है।
मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में इसके क्रियान्वयन में अब तक किस तरह की चुनौतियां देखने को मिली हैं?
मैं चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी या अवसर मानते हुए देखती हूँ, क्योंकि जो 5 साल रहा है, चुनौती के साथ साथ हमारे इतने अच्छे इसमें उपलब्धियां रही है कि अब वो चुनौतियां ही हमें लगता है बहुत बड़ा अवसर है। स्केल है, डाइवर्सिटी है, डायलेक्ट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कॉन्टेक्स्ट हैं, कल्चर है, ये सब बहुत भिन्न भिन्न, एक राज्य के अंदर भी बहुत सारे मिनी कल्चर्स हैं, मिनी कॉन्टेक्स्ट हैं। जब इनको हम देखते हैं, शुरुआत में इनको चैलेंजेस मानते हुए लेते हैं, पर एक बार आप उन चैलेंजेस को एड्रेस कर लेते हैं जन भागीदारी से, राज्यों के भागीदारी से, तो वो जो कस्टमाइजेशन होता है उससे जो उभर कर हमारा जो आज की तारीख में जो लर्निंग्स और जिस तरह से मिशन कर्मयोगी आज एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विश्व में स्थापित हो रहा है, तो वो जो चैलेंजेस थे उन्हीं को एड्रेस करते हुए एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी विश्व स्तर पर भी कर्मयोगी मिशन से प्राप्त हो रहा है।
मिशन कर्मयोगी द्वारा उपलब्ध कराए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल की वजह से पिछले 5 साल में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के व्यवहार या एटीट्यूड में किस तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं?
बिहेवियरल चेंजेस, जैसे अभी हम लोगों ने 10 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारियों को भारत सरकार में सेवा भाव में एक दिन का जो प्रशिक्षण है उसमें उनको सेवा से संबंधित उनका भाव क्या होना चाहिए इसमें प्रशिक्षण दिया, या सेंसिटाइजेशन का एक 1 डे सेमिनार की। इससे हमें बहुत अच्छे से फीडबैक जो मिला है, विशेषकर रेलवे से, पोस्टल से, नागरिकों से, कि क्या उन्होंने कोई परिवर्तन देखा है, बिहेवियरल शिफ्ट देखा है, तो फीडबैक से हमें पता चल रहा है कि बिहेवियरल कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमने किया है, हालांकि उसमें और भी करने का बहुत स्कोप है और करेंगे, पर बहुत पॉजिटिव हमें फीडबैक जो मिला है उससे हम उत्साहित हैं कि आगे चल के इसको और अच्छे से हम बिहेवियरल शिफ्ट कराएंगे, तो नागरिकों का भी जो फीडबैक है सेवा की गुणवत्ता के संबंध में वो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होता है।
इस प्लेटफॉर्म पर कई तरह के कोर्सेज उपलब्ध है, आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर और किस तरह के कोर्स जोड़े जाएंगे?
हमारा पूरा ध्यान ये रहेगा कि डिमांड बेस्ड कोर्सेज हम करें। डिमांड का मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बने, उस प्लान में हर रोल, हर फंक्शन, MTS से लेके सेक्रेटरी तक वो अपना बताएं कि मेरा ये रोल है इसलिए मुझे ये कॉम्पिटेंसी की आवश्यकता है, तो वो पूरा डिमांड ड्रिवन रहेगा, जो भी डिमांड आएगा उसी के हिसाब से हम ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे।
आखिर में हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और मिशन कर्मयोगी के अगले 5 साल का रोड मैप कैसा रहने वाला है?
मैं ये समझती हूँ कि ये कमीशन ने जो अभी तक के 5 वर्षों में कार्य किया है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स, पॉलिसीज, मानकीकरण, किस तरह से कैपेसिटी को बिल्ड करना चाहिए, किस तरह से उस कैपेसिटी में परिवर्तन आया है कि नहीं कार्य करने में, एक तो हो गया आपने पढ़ लिया, कोर्स कर लिया, पर क्या उस कोर्स को करने के बाद कर्मचारी अधिकारी अपने कार्य में गुणवत्ता ला पाए कि नहीं, और उस कार्य की गुणवत्ता की वजह से नागरिक तक ये सेवाएं और गुणवत्ता से पहुंचाया गया कि नहीं, तो अगले 5 वर्ष में अभी जहां हमने पढ़ाना लर्निंग प्रोडक्ट शुरू किया, अब हम इसको जोड़ना चाहेंगे कि कर्मचारी अधिकारियों के परफॉर्मेंस में इस लर्निंग से क्या कोई बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, और उस बढ़ोतरी से क्या विकसित भारत के लक्ष्यों को योगदान मिल रहा है कि नहीं, और अंत में हमेशा सिटीजन सेंट्रिक हमारा फोकस रहेगा, तो हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट, क्या सर्विस क्वालिटी के इम्पैक्ट से सिटीजन को ये महसूस लार्ज स्केल में हो रहा है कि नहीं, इसमें भी हम ध्यान।
इस कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में